जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा 6 अप्रैल 2016 को मेरठ में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो गोदावरी के तट पर एक बड़े प्रसिद्ध भक्त से मिले जिनका नाम था रामेंद्र रॉय। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्होंने भक्त से अनेक प्रश्न पूछे। इस प्रकार भक्त की इच्छा होती है भगवान की महिमा को बढ़ाए, भगवान की महिमा होती है भक्त की महिमा होना, हमें ये उम्मीद ही करना चाहिए हमारी महिमा में भगवान को बनानी चाहिए। हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ये था कि असली धन क्या है। रामन रॉय ने कहा असली धन है भगवान का नाम। तो आप सब यहाँ उपस्थित हो, आप असल में मेर धाम मेर के असली धनी व्यक्ति। किसी बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, पर असली धनी व्यक्ति वो है जिसने भगवान के नामों को स्वीकार किया। सब अत्यंत सौभाग्यशाली। तो मैं भगवतम के पौधे स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हो ये सारे श्लोक बड़ा खास महत्व रखता है। क्यों कौन बताएगा? ये इस अनुवाद इस प्रकार से ग्रंथ अंग्रेजी में है, एक अनुवाद मैं हिंदी में करूँगा। सुनीति माता अपने बेटे ध्रुव को से पढ़े तो यही कह रही है। क्या कह रही है? कह रही है मेरे बेटे तुम्हें परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। किसकी शरण?
भगवान की।
क्योंकि वो अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु है। और व्यक्ति जो कि जन्म मृत्यु के बंधन से कहा चाहते हैं उस सदा उनके शरणागत होते हैं। और हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं उनकी सेवा के माध्यम से। निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में। तो हमारे शास्त्र का उपदेश क्या है? शास्त्र का उपदेश है मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, हर कदम पर खतरा है। अगर हमें ऐसी सोचते हैं भगवान के शरण में पहुंच जाए। श्रीमद् भागवतम में ये 14 स्कंद में आप ध्रुव भगवान की कथा होते हो। श्रीमद् भागवतम में भगवान के भक्तों की निंदाओं का वर्णन है। ध्रुव भगवान के पिता का राधा भगवान के जाना पा जिनकी दो पतियां थी सुनीति और सुनीति। एक दिन ध्रुव महाराज प्रयास कर रहे थे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए और उनकी सुतेली माँ जिनके प्रति पिता का ज्यादा आकर्षण था, ध्रुव तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, अगर पिता की गोद में बैठना है मेरे गर्व से जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, ये संभव होगा जब तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दूसरे शब्द में स्मृति माता कह रही थी अभी तुम्हें शरीर को त्याग दो फिर भगवान की कृपा होगी तो मेरे घर से जन्म मिलेगा फिर तो बेटा की गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव ने जब उनकी सतीनी माँ ने डांट ली थी, ध्रुव के पिता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनते गए। ध्रुव नाथ छोटे बालक थे, 5 साल, ऐसे तो 5 साल के बच्चे अपराध महसूस नहीं करते, तो ध्रुव कोई उदाहरण युवक नहीं था, क्षत्रिय कुल था और ध्रुव बड़ा अपमान महसूस किया। रोते हुए गए पिता के पास, माता के पास, और जैसे मैं कहा उनकी पिता की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुनीति। सुनीति थी ध्रुव की माता, सुनीति थी उनकी सुतेली माँ, और ध्रुव के पिता का ज्यादा आकर्षण था सुतेली माँ के प्रति। तो ध्रुव ने बड़ा अपमान महसूस किया और रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचा। माता के पास सूचना पहुंच गई थी कि सुतेली माँ ने महल में इतने जोर से चिल्ला कर कहा कि नौकर ने भी सुन लिया और नौकर ने दौड़ कर कह दिया, सुनीति माता आज हमारे बेटे पर डांट पड़ी है। तो ध्रुव ने पूछा कोई मेरी मदद कर सकता है, और माता ने कहा मैं तो मदद नहीं कर सकती। तो सुना जाता है भगवान तुम्हारी मदद कर सकते, भगवान कहां प्राप्त होते हैं। ध्रुव ने निर्णय कर लिया मुझे अब जाना चाहिए जंगल में, 5 साल का बाल है, भगवान उसको देखिए। और जैसे ही वो जंगल से निकल महल से निकलने वाले थे वहां पहुंच गए, नारदमुनि पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जानते हैं ना चीजों की है और नारदमुनि बारह में से एक महाजन माने जाते हैं हमारे शास्त्र में। बारह महाजनों का वर्णन है भगवत संघ में, राजमुनि ठीक समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा छोटे बच्चे हो जाओ खेलो कूदो, क्यों हमें सुतेली माँ के शब्दों का अपमान महसूस कर लिया, ये ठीक नहीं है। गुरु ने कहा अगर आप मेरी मदद कर सकते हो भगवान को खोजने में, भगवान को प्राप्त करने में, तो मैं आपसे चर्चा करने को तैयार हूँ, नहीं लो ये उन्होंने देखा मेरा बड़ा भेद है भगवान को समझने में। उन्होंने उपाय दिया, उन्होंने कहा कि भगवान का रूप बनाओ मिट्टी और जल के साथ, उनका चिंतन करो और मंत्र का उच्चारण करो। तो इन संक्षेप में साधु में यहाँ द्रोमान की माँ क्या कह रही है, हमें परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। कई बार जब आपको ये उपदेश दिया जाता है मन मन क्या कहता है, मन कहता है हमें माया छोड़नी पड़ेगी, भक्ति स्वीकार करेंगे ये जुड़ना पड़ा, ये जुड़ना पड़ा, ये जुड़ना पड़ा, पर हम भूल जाते हैं ये भौतिक संसार एक बड़ा जेल खाना है जिसमें हम सब कहते हैं सच या झूठ। आप सुनते हो गए अमेरिका में कोई कैदी नहीं है, तो भारत नहीं है। विश्व के किसी कोने में जाओ देश कोई बच सकता है, जितने कष्ट भारत में उतनी विदेश में बुढ़ापा नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरी शरण है इसका जैसे आप जानते हो ये सब बड़ा खास महत्व है, क्योंकि हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, किसी इसको भी स्थापना की। और पिछले साल हमने गोल्डन जुबली मनाई थी बाबा जी की यात्रा पर, बाबा जी को उनके गुरु महाराज ने 1922 में आदेश किया। वैसे तो बाबा जी का जन्म बड़े धार्मिक वातावरण में हुआ, उनके पिता का नाम था गौर मोहन दे और उनके पिता शुरू से ही चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा भक्त बने कृष्ण। उनके घर में कोई संत आता था उन्हें कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो छोटी आयु में ही बाबा जी को संस्कृत की शिक्षा, निबंधन करता बचनों की शिक्षा और छोटी आयु में ही ये सब प्रेम करना बाबा जी ने आरंभ कर दिया था। इस विषय पर प्रहलाद महाराज कहते हैं छोटी आयु में अच्छे गुण प्राप्त करोगे सारी जिंदगी इन गुणों के साथ। और क्यों मनुष्य जीवन बड़ा, तो 1921 में प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले थे, उनके मित्र थे। उन्होंने कहा अभय बाबू मैं तुम्हें एक खास संत के साथ मिलाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो अनेक संतों को मिल चुका हूँ। प्रभुपाद जी के पिता थे वो बकायदा संत को निमंत्रण देते थे, पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए ये है वो युवक जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की रूपी को सफल बनाया।
पूरे विश्व में
विश्व के कोने कोने में ये हरि नाम पहुंचेगा। आज आप विश्वास करते अपनी सच स्वीकार, आज आप दुनिया के किसी कोने में जाओ आप हरे कृष्ण की बात हमारे दिल्ली में व्यापारी है, तो स्वीडन में छोटा सा गांव है, एक फैक्ट्री है, वहां अपने सामान एक्सपोर्ट करते। तो 2 साल पहले मुझे कह रहे थे स्वामी जी मैं वो छोटे शहर में गया था मुझे 8 हरे कृष्ण के फैमिली मिले पूरे शहर में।
तो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से प्रभुपाद जी उनके प्रतिदिन प्रयास है, उसमें कोने कोने में आज ये हरि नाम फैल गया है। आज इस पांच संसार के 650 से अधिक मंदिर एक 120 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और जो ग्रंथ है ईश्वर की हर प्रतिभाषण में प्रकाशित हो गए। तो चैतन्य भगवान की भविष्यवाणी हो उसने सपोर्ट करने का नाम है। तो थापा जी ने बहुत प्रयास किया और अंत में 1963 में एक कार्गो शिप में वो गए। कहा क्या करना से आप जब इधर से दिल्ली जाते हो 400-500 रुपए तो जेब में रखते हो। तो प्रभु जी गए अमेरिका केवल 40 रुपए के साथ। 70 साल की आयु में 40 रुपए के साथ कोई उन्हें छोड़ने भी नहीं आया था। प्रभु जी का परिचय हो गया था एक बड़ी धार्मिक और श्रीमती महाराज जी के साथ, उनके पानी की जहाज होते श्रीमती महाराज जी से। जब प्रभुपाद जी ने निवेदन किया कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ गुरु महाराज के आदेश का पालन करने में, श्रीमती महाराज जी ने आश्चर्य होकर कहा स्वामी जी अब इस उम्र में जाओगे 70 साल की आयु में मर जाओगे कर्म में। प्रभुपाद नहीं उन्हें जानते जो एक पानी के जहाज में मुझसे टिकट दे दी और यात्रा के दौरान 13वें दिन पर 35 दिन की यात्रा थी। 13वें दिन में हार्ट अटैक हुआ। पहली ने सोचा मेरी योजना सफल नहीं होगी, 2 हार्ट अटैक। तो अगले दिन सपना आया प्रभुपाद जी को जिसमें भगवान श्री कृष्ण कुठवार बनकर नाव में थे। नाव में नारद मुनि अनेक देवता थे। ये नाव बड़े पानी के जहाज को खींच रही थी। उन्हें प्रभुपाद है भगवान ने कहा, अरे बाबू घबराओ मत, योजना सके। तो प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचे उन्होंने वहां के आचरण को देखा। प्रभुपाद जी ने सोचा कौन सुनेगा ये संदेश को, चाय कॉफी नहीं पियो, ये नहीं करो ये नहीं करो। तो प्रभुपाद जी को विश्वास था कि राधा रानी जी की ऐसी कृपा से संभव कार्य भी संभव। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, अलग अलग स्थानों में कोई रहने का ठिकाना नहीं था। एक समय प्रभुपाद जी एक ड्रग एडिक्ट के घर में थे। लगे मुझे वहां मारने को आया। तो प्रभुपाद जी को वहां से चलना पड़ा। तो 50 साल पूर्व 1966 जुलाई में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। ईश्वर संस्था को क्या संदेश दे रहा है? आपको भागवतम गीता चैतन्य चरण संहिता का संदेश दे रहा है। प्रभुपाद जी ने कुछ भी अपने मन का नहीं बनाया, जो शास्त्र में है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता प्रकाशित की, किस नाम से प्रकाशित की? भगवद गीता ही जाता है। जिस भाव से भगवान ने संदेश दिया है, जिस भाव से अर्जुन ने स्वीकार किया, उसी भाव से आपको जान में खुशी होगी कि इस गीता का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। लाखों लाखों की संख्या में लोग गीता पढ़ रहे हैं। इसे तो अगर हम असली सुख जाते हैं हमें भी इस श्लोक के संदेश का पालन करना है। दूसरी क्या कह रही है, दूसरी कह रही है परम भगवान के शरण में दो, ये हमारी कल्पना नहीं है। आज के वातावरण में, खास करके भारत में, खास करके उत्तर भारत में अनेक व्यक्ति दावा करते हैं हम भगवान, भगवान शब्द किनके लिए उपयोग किया जाता है, उनके लिए नीचे प्रकार की दोनों सीमा श्री भगवान श्री ने कहा गया है ईश्वर पार्वा कृष्ण सचिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्व प्राण। अनेक ईश्वर है वेदी परमेश्वर ईश्वर कृष्ण चैतन्य कहा गया है ये कृष्ण भगवान परम भगवान है, बाकी सब क्या है उनके सेवा। भागवत के चौथे स्कंद में नारद मुनि उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार आप अगर पेड़ के बीच पे पानी पिलाते हो उसमें पेड़ में पहुंच जाती है या भूख लगती है शरीर के सारे अंग कमजोर जाते हैं, तो आप भोजन एक ही जगह डालते हो पेट में पूरे शरीर में उसका प्रभाव फैल जाता है। उसी प्रकार हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार कृष्ण भक्ति के द्वारा 33 करोड़ देवता देवी जिनके प्रति हमारा भाव है सब चुका लेते हैं। जैसे कि सकारण समाज में आपको भिंडी का दिन भरना पड़ता है, भिंडी मुख है नदी में मुख है भरना पड़ता है महंगी होती जा रही है, और पानी का बिल भरना पड़ता है, अजी का बिल भरना पड़ता है। देवता देवियां हैं जिनका भार हमें चुकाना है, इंद्र देवता हमें जल देते हैं, सूर्य के देवता हमें रोशनी देते हैं, इन सब कर्ज आप चुका सकते हो कृष्णा भक्ति द्वारा। परम भगवान की शरण लो, वो अत्यंत दयालु है अपने भक्तों के प्रति। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को सूचना दो क्या मेरा भाग्य है कौन दे जाने ही ना भक्त। अगर भगवान चाहते तो खुद बोल सकते थे जो तुम तो आप देखते हो भारत में आपके प्रसिद्ध हिंदी कलाकार बच्चन एक मिनट में कहेगा सीमेंट खरीदो तुम्हारी अगले मिनट में कहेगा चावल ग्रहण दो अगले मिनट में कहेगा कुछ और खरीदा लोग खरीदते हैं इसलिए लोग उनको 4 करोड़ देते हैं दो सौ देते हैं। तो सीमेंट खरीदने का मालिक हो क्या सकता है मेरी सीमेंट खरीदा नहीं नहीं अभी तो बच्चे को कहना विश्वास कर ये भाव उन्हें भगवान की शिक्षा के भाव भगवान को तो बोल सकते थे भगवान ने अर्जुन का तुम सारे विषय को ये सूचना दो भाग्य है तो इस्कॉन संस्था का मूल उद्देश्य है सारे विषय को एक संदेश देना भगवान का संदेश। प्रभुपाद जी ने अपने मन का संदेश हमें नहीं दिया, वो ही असली संदेश दिया जो कि शास्त्र में आ रहा है। शास्त्र का अर्थ क्या है, भगवान की वाणी जिसमें कोई अपूर्णता नहीं कोई दोष नहीं। तो परम भगवान भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं, और जिन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए, इस सवाल में कौन कौन है जिन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए? ये तो शिव भक्तों की सवाल है। तो अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु के बंधन से क्यों छुटकारा चाहिए? वहां पर फिर वैकुंठ धाम है तो फिर में देखने को नहीं मिलेगी, आपके क्रिकेट मैच भी नहीं देखेंगे। आप ये जब छोड़ना चाहते हैं जन्म मृत्यु के बंधन से क्यों? यहाँ सुमित जी कह रही है मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहिए, वो भगवान की शरण लेते हैं क्योंकि ये भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त करो बिना मरण प्राप्त हो। इसलिए भौतिक जगत का एक और नाम है, क्या नाम है? कुंता जगत। कुंता जगत मतलब कि यहाँ क्लेश ही क्लेश। हम भारत में सोचते हैं सारे कष्ट भारत में ही है, विदेश में देखो तो प्रेम की मोटर में घूमने बड़े बड़े कैमरा में, वो हॉलीवुड हॉलीवुड जानते हो, बॉलीवुड जानते हो, जानते हो, ये हॉलीवुड की बड़ी बड़ी घूमने बनती है जिसमें लगता है कि सब अमेरिका में स्वर्ग में बैठे हैं। वहां से तो ये है वहां भी वही कष्ट है जो यहाँ कष्ट। मौलिक संसार में आप क्या देख रहे हो? तनाव चिंता तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कितना भी सुख मिले कितनी भी भौतिक सुविधा मिले मौलिक संसार में कोई सुख नहीं। यहाँ कह रहे हैं भगवान मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए, मुझे परम भगवान की शरण में रहना चाहिए। और भक्ति करने से आप अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते। हमारे हृदय इस समय क्या की स्थिति में है? साफ है, गंदा है? कोई कह रहा था मेरठ के लोगों का स्वच्छ हमारे प्रधानमंत्री का आंदोलन है स्वच्छ भारत, बड़ा अच्छा आंदोलन है क्योंकि सर आपने एक शब्द और जोड़ दिया है स्वच्छ हृदय। अगर आप सड़कों को साफ रखोगे, घर को साफ रखोगे, हृदय को गंदा रखोगे, हम चलेगा हृदय को जब गंदा रखोगे वही चापलूसी करोगे, वही चापलूसी करोगे, काम करोगे। अगर हृदय को शुद्ध बना दिया स्वच्छ फिर आप कहोगे नहीं बात है। जैसे आजकल हम देख देश में कहते हैं बीमारी है, ये है तो कारण क्या है? कारण ये है हनुमान की शिक्षा से हम नहीं बढ़ा। तो अगर समाज में किसी चीज की आवश्यकता है आज ज्ञान की, तो हमारा हृदय इस समय है मैल से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मन इनके प्रभाव के कारण हम भगवान की शरण नहीं। हमें हृदय को साफ करना है। साफ कैसे करेंगे? हृदय को साफ कैसे करेंगे? तो ज्यादा साबुन लगाने से हृदय साफ नहीं होगा, साबुन लगाने से हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना की, स्वयं चैतन्य महाप्रभु केवल आठ शब्द है
जिनका नाम है
महाप्रभु के विषय में कहा गया है
सब अवतारों में सबसे दयालु
अवतार जितने महाप्रभु ने हरि नाम के उच्चारण पर बल दिया वैसे तो चैतन्य महाप्रभु को
गुप्त अवतार माना जाता है
गुप्त अवतार मतलब
छुपा हुआ होता भगवान थे तो प्रकट हुए भक्त के रूप में हमें शिक्षा लेने के लिए
भक्ति की विधि का पालन ऐसे करना है
तो हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है
हमारे जो संत महात्मा है उनकी तुलना की जाती है आध्यात्मिक दोषियों के समान जैसे कि
नमश्रण्य में 5,000 साल पूर्व एक चर्चा हो रही थी
नमश्रण्य जानते हो कहा है मतलब और वहां हजारों संत थे वहां भी शिक्षा दे रहे थे
तो ये प्रश्न पूछा गया था ये बताओ कि कलयुग में लोगों का क्या लक्षण होगा
और ठीक इस प्रकार से अगर प्राप्ति होगी तो समझने का कलयुग में लोग झगड़े भी होंगे सच है झूठ हम झगड़ा करते हैं नहीं करते
लोग आलसी हैं अध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि देते हैं धर्म चाहिए नाम का धर्म असली धर्म है कई बार लोग हमें कहते हैं आपके इस कौन संस्था में तो बहुत से नियम है
देखो हमारे गुरु कितने दयालु हैं
पूरी छूट दी गई
जो करना ही करो
अरे मंत्र हो जाएंगे
तो हम दो व्यापारी भी हो गए पाली भाषा में क्या कहते हैं
जैसे दाम भरोगे
ऐसा भरोगे वैसा मिलेगा
जितने शरणागत हम भगवान के होंगे
उतनी मात्रा में ही भगवान की सुरक्षा
श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में
नरकों का वर्णन है
और
सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा
ये बताओ कि कलयुग में
लोगों का उद्धार कैसे क्योंकि परीक्षित महाराज क्योंकि पृथ्वी के राजा थे जिन्हें ब्राह्मण ने
श्राप दिया था
साधन के पश्चात मैं मृत्यु हो जाएगी तो परीक्षित महाराज ने सुना किस किस प्रकार का पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी से ये बताओ कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा इसके उत्तर में कहा
कलयुग राजन हे राजा कलयुग में
भूषित हो यहां देखो इतने व्यक्ति का निमंत्रण आजकल स्मार्टफोन है आप सबके पास टेलीफोन आज तो कैमरा तो सबके जेब में है एक दो तीन तो ये स्मार्टफोन है जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की तस्वीरों को रखते हैं प्रभाजी के ग्रंथों को
किसने सपना लिया था कि आप सारे ग्रंथों को एक फोन में बिठा सको
हम ऐसे कितने भक्तों के फोन में प्रभाजी के ग्रंथ हैं और जो भक्त नहीं है उसी फोन में तस्वीरें रखते हैं
तो देखा जाए तो करेगा मैं दोष ही दोष है
ब्रेक होने से मैंने क्या हरे करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे नाम की महिमा का प्रचारण किया और इस विषय में शिक्षा से आगे पहले श्लोक में कहते हैं चेत दर्पण चेत दर्पण महात्मा की जैसे कि आईने में अगर धूल हो तो साफ कपड़े के साथ धूल को दूर तुम्हारे हृदय में मैल है काम क्रोध इस मैल के कारण हमारे अतिश्रूप को समझ नहीं पा रहे। तो हरि नाम का एक लाभ यह है कि मैल दूर हो जाती है। आप सबका अनुभव होगा कि जब आप जाप करते हो बड़े ध्यान से आपका ध्यान उत्साह ऊंचा रहता है। तो जब जाप नहीं करते क्या होता है क्या ध्यान उत्साह बढ़ता है या घटता है? इतना तक कि फिर आपको लगता है कहाँ फंस गए हरि नाम में पूरा दुनियादारी चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। और हरिनाम द्वारा क्या कर रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो क्या हमें आपकी दो आपकी दो आपकी दो। तो ये है असली धन। हरे नाम में भगवान ने पूरी शक्ति डाली है भगवान के नामों में अंतर है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कहते कैसे अब एक ही नाम में जाप सुबह से रात कर सकते हो सकते नहीं क्योंकि भगवान के नामों में पूरी शक्ति डाली है भगवान के नाम अभिन्न है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि हरि नाम जो है ये है असली धन। और ये हरि नाम कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। इस्कॉन की स्थापना तो अमेरिका में क्या है कहाँ से भगवान के दिव्य धाम। और ये हरि नाम में इतनी शक्ति है ज्ञान से अज्ञान से जो भी देगा इसका लाभ। तो ये हरि नाम का जाप करना चाहिए। 10 नाम अपराध है आपने अपराधों में विषय में सुना है और जितने ध्यान से करोगे अपराधों से बचते हुए उतना अधिक लाभ पहुंचेगा। साथ में शास्त्रों में ज्ञान भी हमें अनुकूल करना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि हर साल हमारे पास मैराथन करते हैं। आप मैराथन शब्द सीख गए हो अंग्रेजी से। मैराथन शब्द का अर्थ क्या है मैं बताएगा। मैराथन का अर्थ अधिक परिश्रम करना भगवान के लिए। तो आपने देखा होगा ये जयंती के उपलक्ष्य हमारे पास प्रयास करते अधिक से अधिक माता में गीता पाठी पिछले साल आप भक्तों ने कितनी गीता पाठी थी कितनी 5,000 क्यों ये उत्साह दिखाते हैं क्यों बांटते हैं? क्योंकि इन ग्रंथों में ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा लोग सुखी बनते हैं। कई उदाहरण है। एक समय एक औरत आत्महत्या कर रही थी। किसी ने उनके दरवाजे में टकराया दरवाजे खोला भाग था गीता बेच रहा था और देखा मैं तो आत्महत्या की तैयारी कर रही थी और मैंने आत्महत्या का क्या हुआ दूसरे अध्याय का उपदेश दिया और औरत ने निमंत्रण आया, गीता पढ़ मुश्किल किया, मानसिक बंद हो गया। तो इन ग्रंथों के द्वारा लाखों लोग बने, मेरे मन बने, इन ग्रंथों लोग प्रबंधन किया जाता है कि मेरे लिए ज्ञान है, इस ज्ञान के उपयोग से जीवन को सुधार सकते हैं। आज अगर आप देख रहे हो सारे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति को दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव। ग्रंथों में सिद्धांत, भगवान की वाणी, जिसकी व्याख्या प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने की है। जो हम भगवान की वाणी पढ़ते हैं, हम सुन पाते हैं, हाँ यह है असली संदेह। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में लेक्चर दे रहे थे और किसी ने पूछा, स्वामी जी अगर आपकी कृष्ण भक्ति इतनी प्रभावशाली है तो ये बहुत पूरा क्यों नहीं भरा हुआ? बाबा ने कहा, जब तुम अस्थि सोना बेच रहे हो ज्यादा गिराते ही नहीं। भगवान भी क्या कहते हैं, भव नाम जन्म नाम अनेक जन्मों के बाद वो भाग्यशाली अभिव्यक्ति है, तो ये स्वीकार करेगा कि मैं हूं। तो आप सब का अत्यंत सौभाग्य है कि आपने कृष्ण भक्ति स्वीकार किया है। तो स्वीकार करने के लिए नहीं कि हम विचलित नहीं हो सकते। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, कई व्यक्ति प्रयास करते हैं हमें विचलित करने के लिए। आपके मित्र इस तरह क्या कहते, पागल हो गए हो क्या? छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हो, छोटी उम्र में क्या मिला? 50 साल के 7 साल में सरकार आपको 7 साल में रिटायर कर दे दिया। तो भक्ति के लिए तो हमेशा जवान हो। प्रभुपाद जी एक समय एक अमेरिकी नृत्य को संन्यास दे रहे थे। संन्यास का अर्थ है जिसके समाज से कोई संबंध नहीं। तो एक भारतीय व्यक्ति सभा में था तो कहने लगा, स्वामी जी हमारे शास्त्र में तो लिखा है संन्यास तो बूढ़ों को देना चाहिए, जवानों को नहीं। तो प्रभुपाद जी की आयु थी लगभग 75 साल, भारतीय व्यक्ति की आयु थी वही 35 साल। प्रभुपाद जी ने हमसे पूछा, तुम्हारे विचार से बूढ़ा किसे कहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मृत्य के निकट हो। प्रभुपाद जी ने कहा, तो मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे से पहले नहीं होगी? और उसने कहा, नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, तुम भी बूढ़े हो। हम सब बूढ़े हैं, हमको लगता है 200 का बच्चा मृत्यु के से दूर है, 80 साल का व्यक्ति ज्यादा निकट है। आप देख सकते हो हर उम्र में खतरा। तो जो बुद्धिमान इसलिए भागवत में कहा गया है, पदम पदम याद भी पदम निशान, हर कदम पर खतरा है। तो जो अति सुख चाहते हैं उन्हें थोड़ी तपस्या भी करनी पड़ेगी। तपस्या के बिना आपको अति सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सोचते हो हाँ हमें जन्म लेने के बाद छुटकारा चाहिए, हमें ऐसी सोच चाहिए, पर हम जीवन भरने का ध्यान नहीं। भगवान क्या कहते हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, सर्वान महामेघम हम धम स्वरूप करो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ध्यान से सुना, भगवान ये नहीं कहते हाँ दुनियादारी करते जाओ मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान कहते मेरी शरण में आओ क्या तो ही मैं, जैसे भगवान कहते हैं मन मन भाव मन बात करो मन आजी मन नमस्ते माँ में बाजी सत्यम दे सती मैंने मेरा भाग बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, देर बिना शंका के तो मेरे धाम बनाने के योग्य हो जाओगे। भगवान जी भी कहते जो करना करो मेरे धाम लौटने के योग्य हो जाओगे। कहने का तात्पर्य ये है, परम भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे परम भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी के प्रकट होने से पहले पूरे विश्व में शायद ही कोई कृष्ण भगवान का भक्त था भारत के बाहर, आज लाखों लाखों भक्त हैं सारे विश्व में। क्यों? कि प्रभुपाद जी ने शुद्ध संदेश दिया समाज के सुधार के। तो आप सब का सौभाग्य है कि आप इस भक्ति मार्ग से जुड़े हो, पर हमें दृढ़ होकर जुड़ना पड़ेगा। श्री गोपी स्वामी ने ग्रंथ दिया है हमें श्री उपदेश में, आप में से कितने मत में श्री उपदेश में पढ़ा है, बहुत कम 5 साल के बाद। तो उसमें हम कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्धन त्यागे सतर्वे। अगर भगवान के शरण का भला चाहते हो भगवान की भक्ति उत्साहित होकर करना चाहिए, क्यों नहीं? अरे आपको मौका मिल जाए प्रधानमंत्री के साथ रहने का, मुझे उत्साहित हो जाओगे भगवान की भक्ति उत्साहित होगा। देर धोकर होना पड़ेगा साथ में, तो दिल होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम किसी ने कुछ चुना दिया हम बाकी छोड़ दें। ये दिन हमारे ने कहा है दिनाद पीस में चेना रोड पीस आई हमारे ना मना देना। अगर तुम सदा हरि के नाम लेना चाहते हो तो दिन से जीव होना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 विषयों पर बल दिया। सबसे पहला था साधु संग। साधु संग मैंने सुना है कि आगे मेरे केंद्र में हर शनिवार कार्यक्रम होते हैं, हर शनिवार के प्रोग्राम में आप में से कौन कौन आते हैं मंदिर सामने? सबको आना चाहिए। साधु संग में रहोगे तो बार बार सुनोगे भक्ति का महत्व, साधु की समय से दूर रहोगे भक्ति की महत्व को भूल जाओगे। तो इसलिए साधु संग बहुत आवश्यक। आप भक्तों से निवेदन है श्री जीवन के प्रोग्राम में सबको प्रयास करना चाहिए। आने के लिए तो टिकट भी खरीदनी पड़ती है, प्रसाद फ्री 10 रुपये का बिल नहीं आता। आना चाहिए। सही लोग तो इतवार वाले दिन मैं की रसोई बंद कर देते हैं, इन्हें आता हमारे कृष्ण के मंदिर में नहीं प्रसाद में। तो साधु संग में रहोगे तो हरि नाम भगवान के नामों की महिमा का ज्ञान मिलेगा। साथ में शास्त्रों को पढ़ो। अब सबके पास भगवद गीता या तीनों की कॉपी है सबके पास, सोचना सर आप में से कितने भक्त हो जो गीता को रोज पढ़ते हो? माता माता में ज्यादा उत्साह पुरुष अगला प्रश्न है कितने भक्त हो रोज अखबार पढ़ते हो या टीवी देखते हो? सभी अखबार पढ़ने के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, गीता के लिए टाइम नहीं है। अफसोस की बात है, गीता का उपदेश पूरे मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का संदेश पढ़ोगे बुद्धि तेज होगी, तेज बुद्धि के साथ आप ये निर्णय कर पाओगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल। तो एक निवेदन यह है कि गीता आप सब पढ़ो, कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ, तो आपने कौन कौन दिया हो ये जिम्मेदारी उठाने में गीता का श्लोक पढ़ोगे सब पक्का। अगर सोलह में जाप कौन कौन कर रहे हैं आपने, माला के जाप और आठ माला के करीब, चार माला के करीब, एक माला की माला का आदमी अगर बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। महामंत्र के उच्चारण से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, कृपा करके हमारी सुरक्षा कीजिए, तुम्हें भक्ति दीजिए। जो आप प्रार्थना करें, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है माता के लिए, ये हमारी पुकार है भगवान की कृपा के लिए। भगवान ने हमें जीव दिए और दो कान दिए हैं, ये जीव द्वारा हम प्रजापा कर सकते हैं या भगवान के नामों का उच्चारण। तो सदुपयोग है भगवान के नामों का उच्चारण। और वैष्णव समाज में हर प्रयास रहना चाहिए हमें एक दूसरे का उत्साह बढ़ाए, एक दूसरे के गुणों को देखो, एक दूसरे के गुणों को देखें, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाए। बहुत एक समाज में काम सरा एक दूसरे का की आलोचना करते रहते हैं, तो कहते हैं इंग्लिश में लेग पुलिंग, हिंदी में कहते हैं पांव खींचना, इसकी निंदा करो उसकी निंदा करो। हमें प्रजापा से बचना है, रूपा गोस्वामी कहते हैं प्रजापा से, प्रजापा का अर्थ है वो चर्चा जिसका भगवान से कोई सुना नहीं। प्रजापा से हमें बचना है, प्रजापा करेंगे भक्ति नष्ट हो जाएगी, कृष्ण कथा करोगे भक्ति सुधरेगी। तो कई बार भक्त कहते हैं हम तो प्रजापा नहीं करना चाहते, तो हम करें क्या जहां दूसरा व्यक्ति करना चाह रहे हैं, हमें जबरदस्ती सुनना पड़ा है। अगर प्रजापा करने आए आपके समक्ष आपका अनुभव पर बंद करके कह देना मेरे अपराध नहीं करूंगा, अपराध करूंगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो एक दूसरे के गुणों को देखो, मित्रता का भाव रखो भक्तों में, मित्रता का भाव का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है हम सब मिलकर एक साथ भगवान का प्रचार करें, घर घर जाए प्रचार करने के लिए। जितने माँ बहु ने अपने भक्तों को भेजा घर घर जाओ प्रचार करो, घर घर जाओ प्रचार करो। आजकल भारत में हम देखते हैं कि घर घर ईसाई लोग घर घर जाकर बाइबल बांट रहे हैं, तो प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप भक्तों में कम सा, आज हमने एक स्थान देखा जहाँ की एक बिल्डर हमें जगह देना चाहता है मंदिर बनाने के लिए। आप लोगों का क्या विचार है, यह मंदिर बनना चाहिए सबका, मंदिर कौन बनाएगा, विदेश के लोग की आप दिल्ली में विदेश है अब मेरठ के लिए मेरठ लोग बनाएंगे आपकी इच्छा की आप मंदिर बने, सब प्रयास करोगे देखो भगवान की क्या इच्छा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश है, जो भगवत गीता का संदेश है, जो गीता का संदेश है वह है शुद्ध भक्ति। इसे आप गंभीरता से स्वीकार करो, ये नहीं कल 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 से पहले कहा जाता है, हमें तुरंत ही भगवान के शरण में हो जाना चाहिए। और ये है
भगवान के नाम के उच्चारण से आप असली आनंद अनुभव कर सकोगे। तो आपसे निवेदन है नाम लीजिए। मैंने देखा कि कई भक्त हैं विचार माला कर रहे हैं, एक माला कर रहे हैं, आठ माला कर रहे हैं। उसी ने जो एक माला कर रहे हैं उसे निवेदन है चार करें, चार कर रहे हैं उसे निवेदन है आठ करें, जो आठ कर रहे हैं उसे निवेदन है बारह या सोलह तक पहुंचे। जब आपके संपत्ति बढ़ती है तो आनंद प्राप्त होता है, बैंक बैलेंस बढ़ते जाता है। ये है असली संपत्ति, यही संपत्ति आपके साथ जाएगी, बाकी सब तो यहाँ ही रहना है। तो आप सब बुद्धिमान हो, कृपा करके अभी तैसे स्वीकार कीजिएगा और दृढ़ होकर भक्ति की विजय का पालन कीजिएगा। दृढ़ होकर करोगे, साधे संग रहोगे तो विचलित होने से अपने आप को जा सकोगे। यही तो माया का बड़ा तेज प्रभाव रहता है, माया का इतना तेज प्रभाव रहता है कि आपको विचलित करना बड़ा सरल है। इसलिए दृढ़ होकर सेवा कीजिए।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.